ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी के पुण्यतिथि के निमित्त आप सभी बाबा के अनन्य रत्न भट्टी करने आए हैं, तो आप सबका, सभी मधुबन निवासी, शांतिवन निवासी, सभी दादियों, सभी बड़े दादाओं की तरफ से और हमारी तरफ से भी हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भट्टी की ये आज की पहली क्लास जी, ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है, कोई है ट्रांसलेशन के लिए वहाँ? भट्टी की ये पहली क्लास, कोई भी कार्य, बाबा की अभी परसों की मुरली थी कि विधि पूर्वक करें तो सिद्धि प्राप्त होती है। हम भट्टी के लिए आए हैं और भट्टी की अनुभूति करके जाएं। जैसे कि कई बार बाबा ने कहा है कि जो कार्य विधि पूर्वक करते हैं तो सिद्धि मिलती है, और आग में कोई भी चीज डाल दो तो उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। हम भी भट्टी करने आए हैं। भट्टी क्या है? योग अग्नि, अग्नि रूपी, योग अग्नि रूपी। इसमें आत्मा को हम तपाएंगे तो हमारा भी रूप चेंज होना चाहिए। तो कहने का मतलब, भट्टी शुरुआत करने के पहले कुछ चीजें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर इन बातों को आप थोड़ा सा मनन चिंतन करके और भट्टी शुरुआत करेंगे तो हम समझते हैं बहुत आनंद आएगा, क्योंकि ये वरदानी भूमि है, वरदानी मंत्र है, दादी की, बड़ों की, बाप दादा की दुआएं साथ में हैं। तो जो बाबा के महावाक्य की, छोड़ो तो छूटे, आज सबसे बड़ी हरेक के जीवन में, चाहे लौकिक या अलौकिक परिवार में भी आ गए हैं, तो एक ही प्रॉब्लम है कि ये काम हम कर लेते अगर ऐसा नहीं होता तो, ये बात नहीं होती अगर ऐसी नहीं होती तो। हर जगह हम कहते हैं हमारी समस्या का कारण कोई और है। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरे सामने जो प्रॉब्लम है, मेरे सामने जो समस्या आई है, उसका समाधान मेरे पास है, लेकिन हम कारण किसी और को बताते हैं। लेकिन बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटे। तो एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक सेठ जी और सेठानी रोज सत्संग में जाया करते थे। उनके पास एक पाला हुआ तोता था जिसको पैरट बोलते हैं, मिट्ठू बोलते हैं। वो रोज देखता था कि सुबह सेठ जी और सेठानी कहीं जाते हैं, तो एक दिन उन्होंने पूछ लिया, तोते बात करते हैं ना, कि आप रोज सुबह कहाँ जाते हैं? तो सेठ ने कहा कि हम एक बहुत पहुंचे हुए आध्यात्मिक गुरु हैं, महात्मा जी हैं, उनकी सत्संग सुनने जाते हैं। तो कहा आप मेरा एक काम कर देंगे? तो कहा कहो। कहा बस उनसे ये पूछना कि मैं मुक्त कब होऊंगा। कहा ठीक है। कहा ठीक है। जब सत्संग पूरा हुआ, सब चले गए, तो सेठ जी ने महात्मा जी से पूछा, हमारे पास एक तोता है और उसने आज ये एक प्रश्न पूछा है कि आपसे पूछें कि मैं मुक्त कब होऊंगा। जैसे ही ये बात सुनी, महात्मा जी गिर पड़े, हिलाया डुलाया, देखा महात्मा जी बेहोश हो गए। अभी दोनों तो घबरा गए और वो घर चले गए। घर चले गए, घर जाने के बाद तोते ने पूछा, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर लाया? कहा नहीं, तुम्हारा भाग्य खराब है। कहा क्यों? कहा जैसे ही हमने प्रश्न पूछा, किसने पूछा है कि मैं मुक्त कैसे हूंगा, तो वो महात्मा जी चक्कर आके गिर गए, हम तो आ गए। तोते ने कुछ नहीं बोला और तोता सुनते बरोबर गिर पड़ा। अभी ये डर गए, इसको क्या हुआ, ये सुनते बरोबर हिला रही फिर भी वो गिरा पड़ा है। जल्दी से उसका दरवाजा खोला, उसको पकड़े, जैसे ही खोले पिंजरा उड़ से तोता उड़ गया। कहने का तात्पर्य, हम तो भगवान के महावाक्य कितने वर्षों से सुन रहे हैं कि छोड़ो तो छूटे। क्या क्या छोड़ना है? सबसे पहले मैपन, देह अभिमान। आज हम 108 छोड़ने की लिस्ट निकाल सकते हैं, 108 चीजें हम छोड़ें। बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, लेकिन 108 तो बड़ी इजीली निकलेगी कि कहां कहां हम कहते हैं कि ये बात होती इसलिए ये होता है। कहीं पर भी कोई कारण नहीं होता है। ज्ञान सुनते सुनते हम इतने ओवरफ्लो ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान के स्वरूप नहीं बने। जब भी समस्या आती है तो कहते बहन जी बात ऐसी थी ना, अगर उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया होता तो मैंने गुस्सा नहीं किया होता। उसने गुस्सा दिलाया, इसका मतलब गुस्सा तो आपके पास था ना, तो आया ना। आपके पास कोई आए बाजू वाला, हमें थोड़ा कांदा प्याज दे दो, आनियन जिसको बोलते हैं, आप कहेंगे नहीं हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम लोग तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं। आपके पास है नहीं तो आप देंगे नहीं, तो आप मना कर देंगे ना, नहीं है। ऐसे आपके पास गुस्सा जब है ही नहीं तो आप करेंगे कैसे, कोई कितना भी करे, लेकिन आपके अंदर है इसके लिए आ जाता है। इसका मतलब क्या, गुस्सा छोड़ना है तो छूटेगा, अपने आप नहीं छूटेगा। उस छोटे से पंक्षी ने एक बात से जान लिया कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा। जैसे महात्मा जी गिर गए चक्कर आके, वो भी समझ गया कि ये इशारा मेरे ही लिया था, वो भी चक्कर आके गिरा। मालिक ने क्या सोचा, ये मर गया, और जैसे ही पिंजरा खोला तो वो मुक्त हो गया। हमें भी कहां से मुक्त होना है, इस देह के भान से। आत्मा इस पिंजरे में कैद है, जब तक आत्मा इस देह भान के पिंजरे में कैद रहेगी परमात्मा के पास नहीं पहुंचेगी, परमात्मा की शक्तियां परमात्मा के दिव्य गुण अंदर नहीं आएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। और हम हमेशा कहते रहेंगे आज मेरे तन में ये दुख है, आज मेरा मन इसने दुखा दिया। तन का दुख किस लिए है, बाबा ने कई मुरलियों में कई बार इसके कारण बता दिए। हमारे अपने कर्म भोग हैं, बिना कारण किसी को कोई सुख भी नहीं दे सकता, बिना कारण कोई किसी को दुख भी नहीं दे सकता। तन में दुख आ रहा है तो किस लिए, इस तन से हमने भी किसी को दुख दिया है। अब वो हर चीज का बाबा ने जहाँ कारण बताया वहाँ निवारण भी बताया। कैसे दुख हो, दुख दूर कैसे हो, योग से, क्योंकि जहाँ योग है वहाँ भोग खत्म हो जाते हैं। योग अग्नि भोग को भी खत्म कर देती है, लेकिन योग कब लगेगा, जब मैपन जाएगा, जब आत्मा पंची इस पिंजरे से आजाद होगी। तो हम इतने वर्षों से ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन अपने आप से पूछें, जब हम योग में बैठते हैं एक सेकंड याद किया कि मैं आत्मा परम पवित्र और निकली और परमात्मा के पास डायरेक्ट परम धाम या सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा फरिश्ते के सामने जाके फरिश्ता बन के उड़ जाती हूँ, कि आधा घंटा यही बार बार याद दिलाना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, बाबा दया का सागर है, प्रेम का सागर है, करुणा का सागर है। बाबा को भूला है क्या कि वो दया का सागर है, करुणा का सागर है, बाबा को याद दिलाते। अभी सिर्फ ये मंत्र नहीं जपना है, अभी वो स्वरूप बनना है, और जब तक स्वरूप नहीं बनेंगे, ऊपर पंछी नहीं उड़ा, मुक्त नहीं हुए, जीवन मुक्ति नहीं है। तो हम सबका पुरुषार्थ क्या है, छोड़ो तो छूटे। सबसे पहले मैपन मैपन आता है देह के अभिमान से, और पांच तत्वों का ये शरीर बना है, पांच तत्व दुनिया में हैं, और पांच तत्वों से बने ये शरीर में पांच तत्व हमें दुख देते हैं, पांच, और पांच तत्व सुख देते हैं अगर इसका सही उपयोग करें तो। वो पांच तत्व कौन से हैं? वो पांच तत्व कौन कौन से दुख देते हैं और कौन कौन से सुख देते हैं? सबसे पहले कहता है कि पृथ्वी, मिट्टी, ये शरीर भी क्या है, मर गई आत्मा निकल गई तो क्या कहते हैं, मिट्टी को जल्दी ठिकाने लगाओ नहीं तो बास आएगी। ये मिट्टी है ना, आत्मा है तो चैतन्य है, शरीर से आत्मा निकल गई तो ये मिट्टी है, तो ये शरीर में मिट्टी है। अगर सूखी मिट्टी आप हाथ में उठा लो फिर झाड़ दो, थोड़ा बहुत हाथ में लगेगा तो मिट्टी वजनदार है, वजन होता है ना, मिट्टी में वजन भी होता है, तो ये शरीर में क्या है, मिट्टी। मिट्टी क्या है, शरीर। और शरीर को देख के कौन सी भावना उत्पन्न होती है, जो आजकल गलत कार्य हो रहे, बाहर दुनिया में न्यूज सुनते होंगे आप, टीवी देखते होंगे, काम विकार। ये देह मिट्टी है, ये बहुत सुंदर है, इनका फिगर बहुत सुंदर है, क्या हाइट है, क्या रंग है, क्या रूप है, तो आकर्षित कहां हुए, मिट्टी को देखकर। तो जब देह का भान है, मिट्टी का भान है, तो क्या आकर्षण होगा, कौन सी भावना आएगी, काम वासना। इस मिट्टी के भान को त्यागा, ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा हूं। अगर आत्मिक भान में है तो योग परमात्मा से लगा है तो भोग की भावना नहीं आएगी, योग की भावना आएगी। तो जहां पांच तत्वों में से मिट्टी को हमने शरीर समझ के इसके अभिमान में आए या भान में आए तो काम वासना पैदा हुई। देखो नहीं देखो, क्यों बाबा कहते, हरेक के अंदर मणि चमक रहा है, उस मणि को देखो, शरीर को नहीं देखो। तो मिट्टी को देखेंगे तो काम विकार पैदा होगा। मिट्टी में अगर पानी मिल जाए तो कीचड़ हो जाती है, कीचड़ चाहे हाथ में लगे चाहे कपड़े में लगे छूटती नहीं है। तो पानी क्या है, पानी है मोह। मिट्टी में अगर पानी मिल जाए तो वो कीचड़ हो जाती है, वो हाथ में लगती है, वो कपड़े में लगती, छूटती नहीं है, पानी है मोह। जहां मेरा पनाया, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो जहां मोह है वहां दुख है। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो मेरा कहना मानना चाहिए ना, अपेक्षा हो जाती है ना, एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना, शी इज माइन, ही इज माइन, ये मेरा है। तो मोह ने क्या पैदा किया, मोह ने दुख पैदा किया। जहां अपेक्षा है वहां दुख है। आप 200 रुपए का, 250 रुपए का एक बहुत सुंदर फूल का गुलदस्ता लेकर आते हैं, किसी के बर्थडे में देने, घर में किसी का बर्थडे है, या चाहे बाबा के ही कमरे में रखने के लिए आपने लाया 200-250 रुपए का, और वहीं आप मार्केट गए थे, आपने एक 50 रुपए का मटका भी खरीदा, अच्छे से ठोक बजा के देखा, पानी ठंडा है, 2-4-6 साल चलेगा, आप ले आए। अगर शाम को मटका टूट जाए दुख होता है, होता है ना, सोचा था ये 5-6 साल चलेगा, लेकिन वो जो 250 रुपए का गुलदस्ता लाया था उसमें जो फूल लगे वो शाम को मुरझा जाते हैं। हम देखते हैं लेकिन हमको दुख नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमको मालूम था फूल तो मुरझाते ही हैं। तो फूलों से हमने अपेक्षा नहीं रखी थी, तो फूलों ने दुख नहीं दिया, जबकि वो ज्यादा महंगे हैं, 250 रुपए के हैं, लेकिन मटका मिट्टी का है, सिर्फ 50 रुपए का है, उससे हमने क्या रखी थी, अपेक्षा। तो जहां अपेक्षा है, जहां मोह है, वहां पे दुख है। तो ये मोह को छोड़ो तो छूटे। बाबा कहते हैं ना, इससे तो नहीं रहा, लेकिन बेटा है, बेटी है, नाती है, पोते हैं, दोत्रे हैं, पोत्रे, उनमें मोह रख लगी रहती। अभी वो भी, उनसे अपेक्षा नहीं रखो, सभी तो आत्मा है। इस जन्म में वो मेरे बेटे हैं, इस जन्म में नाती पोत्रे धोत्रे हैं, अगले जन्म में किसी और के घर में होंगे, सभी तो अपने हैं। तो जहां मोह छोड़ा तो पानी प्रतीक किसका है? मोह का। और मोह क्या देता है? दुख। और जहां हमने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, अपेक्षा नहीं रखी, वहां पे बड़ा सुख है। तो पानी जो दुख भी देता है, सुख भी देता है, अपेक्षा भी पैदा करता है, और कहीं ना कहीं हमें दुनिया से कहीं ना कहीं छुटकारा भी दिलाता है। जिसने मेरा मेरा कहा वो मर गया, जिसने तेरा तेरा कहा वो तर गया। मेरापन मैलापन लाता है। तो अभी सब कुछ क्या करना है? जो कुछ मेरा है वो हमारा कुछ नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं? बाबा जो कुछ है सब तेरा है, सब तेरा है, सिर्फ चाबी मेरी है, कबाट की चाबी मेरी है। वो चाबी में क्या क्या रखा है? क्रोध रखा है, रोभ रखा है, गुस्सा रखा है, अपनी विशेषताओं का अभिमान रखा है, मैं कितनी अच्छी योगी हूं, मैं कितना अच्छा ज्ञान सुनाती हूं, मैं कितनी अच्छी दिखती हूं, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये सबको पकड़ के रखा है। और ये जब तक पकड़ के रखे तो बाबा के मिलन का आनंद नहीं आएगा। योग कितने भी घंटे बैठे रहे, लेकिन अगर मोह है, बार बार वहीं पे बुद्धि जाएगी। घर में सुबह सुबह किसी ने चार शब्द कह दिए, कलह क्लेश हुआ है, वही बात बार बार याद आएगी, बार बार याद आएगी। योग में भी बैठे तो बाबा आप जानते ना, वो बेटा है मेरा, बेटा हो के मैंने पाला, मैंने पैदा किया, आज उसने मुझे ये कहा। बाबा से योग लगाने बैठे, बेटा ही बेटा याद आ रहा। या जिसने भी दुख दिया है वही बार बार याद आ रहा, जिसने भी कुछ शब्द कह दिए, सुबह अपसेट कर दिए, तो योग के समय भी कौन याद आ रहा है? वो याद आ रहा। आपने उससे अपेक्षा ही क्यों रखी? इतना मोह ही क्यों लगाया? बाबा कह रहे प्यार करना है तो एक बाप से करो ना। क्यों बाबा बार बार कहते बाप के प्यारे और दुनिया से न्यारे बनो? सब हम क्या करते हैं? बाप से न्यारे बन जाते हैं और सबके प्यारे बनना चाहते हैं। सबको खुश करो, इनको भी खुश करो, उनको भी। बाबा ने कहा 100% आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते, तो बाबा को खुश करेंगे, यानी मतलब और जगह से बुद्धि हटी, बाबा से लगी है, बाबा की शक्ति आ रही है, बाबा के सातों गुण आ रहे हैं, तो क्या होगा? मेरा व्यवहार, मेरे बोल अपने आप चेंज है, तो सारे लोगों को मैं अपने आप अच्छी लगूंगी। कहेंगे आपसे 5 मिनट और बात कर लें, 2 मिनट दृष्टि देंगे, बड़ा अच्छा लग रहा। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि में आप नहीं दिख रहे, उसको बाबा दिख रहा, क्योंकि आप बाबा के प्यारे हैं ना, बाबा को देख रहे हैं ना, बुद्धि रूपी नेत्र बाबा को देख रही है, तो निरंतर आंख में छवि किसकी आ गई? बाबा की। तो बाबा दिख रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कहने का तात्पर्य कि आज हम ये सोचे क्या क्या हमने पकड़ के रखा है। तो हम बता रहे थे 5 विकार काम मिट्टी से, मोह पानी से, क्रोध अग्नि है, 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। तो तीसरा है अग्नि, अग्नि है क्रोध। बाबा के महावाक्य, जिस घर में क्रोधी व्यक्ति रहते हैं उस घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहां क्रोध है वहां अशांति है, क्रोधी व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता। वही बात मन में, कैसे उससे बदला लें, कैसे उससे रिवेंज लें, घृणा उसके प्रति, कैसे उसका बुरा करें, कैसे उससे बदला लें, बार बार वही मन में, वही मन में, वही मन में आता रहेगा। तो अग्नि क्या करती है? अग्नि से सब कोई डरते, हाथ जल ना जाए। क्रोधी व्यक्ति होगा तो क्या कहेंगे? बाबा इससे दूर रहो। कोई बहुत गुस्से में तो क्या कहेंगे? जरा पंखा चालू करो, ठंडा पानी दो, शांत हो जाए। तो जहां अग्नि है वहां क्या है? क्रोध है। और क्रोध क्या करता है? हमें अशांति देता है। लेकिन वही क्रोध को हमने शांत कर दिया, उस अग्नि को, एक अग्नि से आप घर का खाना भी पका सकते हैं। अग्नि तो खाना पका के देती, हमारी पेट की क्षुधा शांत करती है, लेकिन वही अग्नि किसी को जला के भी राख कर सकती है। उपयोग करने वाले पर निर्भर करता है, आप उस चीज को कैसे उपयोग करें। अग्नि की जरूरत है, हमारे शरीर में गर्मी है तब तक हम जिंदा है, जैसे ही आत्मा निकल गई तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो कहाँ तक ताप जरूरी है? कुछ हद तक, एक हाइट तक। उससे ज्यादा हो जाए तो हमें गर्मी लगने लगती, पसीना आने लगता। तो अग्नि भी चाहिए, लेकिन उस अग्नि का सही उपयोग हम कर रहे हैं, नहीं तो वो जला के राख भी कर देगी। तो अगर क्रोध है तो वो क्या करेगा? आपकी शांति को भंग कर देगा। और जब मन ही शांत नहीं है तो परमात्मा से कहाँ लगेगा मन? और मन नहीं लगेगा तो योग नहीं लगेगा, तो बाबा से जो प्राप्ति होनी वो तो होगी नहीं। और हम सब तो प्राप्ति करने, भरपूर करने आए हैं ना। तो कहीं ना कहीं क्रोध अग्नि को छोड़ना है अगर शांति की अनुभूति करना है। बार बार याद करें, आत्मा का स्वधर्म शांति है। चौथा है वायु। वायु क्या करती है? चौथा विकार क्या पैदा करती है? लोभ। काम हो गया, क्रोध हो गया, मोह हो गया, अब लोभ। काम, क्रोध, लोभ, मोहंकार है ना, पांच विकार है, पांच तत्व है। तो वायु क्या पैदा करती है? हमारे अंदर लोभ पैदा करती है। और लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता। दुनिया में कहा जाता गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। संतुष्टता से बड़ा कोई धन नहीं है। तो संतुष्टता कब आएगी? जब आपके अंदर लोभ नहीं होगा। और आप ऊपर घूमने गए, सारा दिन घूमे, पांडव वन में, ज्ञान सरोवर में खाना भी खाया, आते आते शाम को नाश्ता भी किया, चाय भी पिया, कहीं पिकनिक पे कहीं बाहर गए, बहुत अच्छी पिकनिक करके आए, काफी पेट भर के खाना खा के आए, आते बर्बर कहेंगे बहुत थक गए, अभी तो ना रेस्ट करना है, कुछ खाना पीना नहीं है। लेकिन घर में किसी ने कह दिया कि गरम गरम पकौड़े बने हैं मिर्ची के और वो उसके पत्ता गोभी के, अच्छा स्मेल तो बड़ी अच्छी आ रही, चलो एक दो ले लेते हैं, एक दो खा लिया, अरे बड़ी टेस्टी, एक प्लेट और चलेगी। कहां तो कहा था अभी नहीं खाना है, अभी एक दो प्लेट और चलेगी, चलो अभी एक चाय भी चल जाएगी, मजा आ गया। तो क्या हुआ, जब आए थे तो कुछ नहीं चाहिए था, जगह नहीं थी, लेकिन वायु क्या करती है? हम बोल रहे हैं, आप तक आवाज कैसे पहुंच रही? वायु के द्वारा। तो कान में आवाज क्या गई? बहुत अच्छे पकोड़े बने हैं, चलो टेस्ट कर लेते हैं। तो लोभ पैदा हो गया और वो पेट को दूसरे दिन बिगाड़ भी देता, जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बड़ा मुंह को टेस्ट आ गया, खा लिया, तो उसने क्या कर दिया आपको? लोभ ने असंतुष्ट कर दिया। बाजार गए, कोई पड़ोसी है या उसने कहा बहुत अच्छी सेल लगी है, दो खरीदो एक फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, अरे वाह घर में 10 जोड़ी जूते पड़े हैं, 3 जोड़ी और ले आए, क्योंकि सुना 2 लेके 1 फ्री मिल रहा है, बड़ी अच्छी डिजाइन है, लेटेस्ट डिजाइन आई। ये सब क्या है? वायु का काम, लोभ। तो जहां लोभ है वहां असंतुष्टता है, और जहां असंतुष्टता है, संतुष्ट नहीं है व्यक्ति, तो उसकी इच्छाएं कामनाएं उसको भगाते रहेगी, बाबा में मन नहीं लगेगा। तो इच्छाएं कामनाएं क्या कर रही है? लोभ क्या कर रहा है? मन को एकाग्र नहीं होने दे रहा। और जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, बाबा से प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। कितने भी साल ज्ञान में चलते हो गए, कहेंगे कि चल तो रहे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लेकिन बहनें जो कहती, बाबा जो कहते, अतीन्द्र सुख का अनुभव वो तो होता ही नहीं, कहां से होगा?
हमने पकड़ के रखा है लोभ को। बाबा ने सबसे पहले कहा कि ये 5 खोटे सिक्के मुझे दे दो, तुम्हारे काम के नहीं है, विश्व की राजाई दे रहा हूँ। लेकिन अभी भी हमने उनको पकड़ के रखा है। और पांचवा तत्व कौन सा है शरीर में? आकाश तत्व। आकाश किस चीज का प्रतीक है? अहंकार। मैं, मेरे से बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। जो मैं बोलती हूँ उससे ज्यादा सही कोई नहीं बोल सकता। मैंने जो कहा वो पत्थर की लकीर है। मैंने कहा तो मानना चाहिए, नहीं माना तो मूड अपसेट, नहीं करना। तो अहंकार क्या करता है? आकाश क्या सोचता है? सारी दुनिया मेरे नीचे है। अहंकारी व्यक्ति क्या सोचेगा? हर व्यक्ति ने मेरी बात मानना चाहिए, भले ही मैं रॉन्ग हूं लेकिन मेरी बात मानना चाहिए। तो अहंकार क्या करेगा? आपको दूसरों से अलग कर देगा। बोलेंगे भाई इससे बचो, बहुत अहंकारी अभिमानी है ये। तो अहंकार आपको लोगों से दूर कर देगा। इंसान अकेला नहीं रह सकता, हम सामाजिक प्राणी हैं। आज दुनिया में डिप्रेशन बढ़ रहा है। डिप्रेशन का कारण क्या है? लोगों को लोगों का स्नेह नहीं मिल रहा। 35 करोड़ अब तक दुनिया में डिप्रेशन के शिकार हैं और दिन पे दिन ये संख्या बढ़ रही है अकेलेपन के कारण। दिल की बात किसी को नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? अहंकार है, लोग डरते हैं इनसे बात कर। जाके बात करेंगे तो एक बात का ये कुछ और बोल के हमारे ईगो को ही हर्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ये अहंकार क्या कर रहा है? हमको लोगों से अलग कर दे रहा है। वही आप बड़े प्यार से मिलेंगे, हंस के मिलेंगे, कैसे हैं? कहेंगे बहुत अच्छे। कहेंगे इनसे जब भी मिलो ना तो मुस्कुरा के मिलते हैं। ये भी बहुत बड़ी कला है। आजादी ने सुबह कहा ना मुरली के बाद, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हो, जब योग में बैठते तब भी मुस्कुराओ। जहाँ आत्मा परमात्मा की दुनिया की सबसे बड़ी प्राप्ति है, वहां पे भी आनंद ना हो, खुशी ना हो तो कब होगी? तो जब योग में बैठते हैं तो वो आनंद चेहरे से दिखना चाहिए, वो रूहानियत दिखनी चाहिए चेहरे से। वैसे भी कहते हैं मुस्कुराने के बहुत सारे फायदे। एक मुस्कान क्या कहती? आई नो यू, यू नो मी, आई एम ओके, यू आर ओके। आपने सामने से किसी को आते देखा, ऐसे किया तो वो भी क्या करेगा? कुछ बोला नहीं, ओम शांति नहीं बोली, गुड मॉर्निंग नहीं बोला, लेकिन ऐसे किया तो वो भी क्या करेंगे? मुस्कुराएगा ना सामने वाला भी। तो क्या हुआ? सामने वाला टेंशन में शायद घर से आ रहे थे, लेकिन आपने मुस्कुराया तो उसने क्या किया? उसने भी मुस्कुरा दिया। तो एक सेकंड के लिए आपने किसी के चेहरे पे मुस्कान ला दी तो क्या हुआ? आपके खाते में पुण्य जमा हो गया। एक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना जिंदगी में वही तो नहीं है, लोगों के पास खुशी तो नहीं है, लेकिन आपने मुस्कुराया तो सामने वाला करेगा ना। क्यों लोग इतनी मंदिरों में जा रहे हैं? कहते कि मंदिर की मूर्तियां ना मुस्कुराती रहती सदा, ऐसे या ऐसे वरदान देती। बाबा आते तो क्यों चाहते कि मुझे दृष्टि मिले? बाबा मुस्कुराते रहता, ये करते रहता। हम भी तो बात समान बनना है ना, तो क्या करेंगे? अभी किसी से भी मिलेंगे तो क्या करेंगे? भले एक शब्द भी मत बोलिए, मौन में रहते हैं तो मौन में रहिए, लेकिन मुस्कुराने में तो बोलने की जरूरत नहीं है ना, ये तो कर सकते हैं। और कहते हैं कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके अंदर से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं खुशी के, वो टेंशन को खत्म करते हैं। क्रोध करने से तनाव बढ़ता है, मुस्कुराने से तनाव दूर होता है। तो जब आप मुस्कुराते हैं तो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे हैं, बल्कि आप ये परिचय दे रहे आपको कुछ प्राप्ति हुई है। सबसे बड़ी प्राप्ति तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई। लोग ढूंढ रहे हैं हमें बाबा भगवान मिल गया, एक वो खुशी, दूसरा हमें ज्ञान की खुशी, दूसरा हमें जो दुनिया जिसको ढूंढ रही उससे मुझे ढूंढ लिया, उससे जो जो प्राप्ति हो रही वो अगर हमारे सामने लिस्ट हो तो खुशी बनी रहेगी, चेहरा मुस्कुराते रहेगा। योगी आत्मा क्यों अच्छी लगती है? उनके चेहरे पे एक रूहानियत है, वो रूहानियत ही मुस्कान है, वो चमक की मुस्कान है। तो कहने का मतलब ये पांच तत्व जो है, ये पांच हमें वरदान भी देते हैं और ये पांच श्राप भी देते हैं। और पांचों मैंने बताया, जहां आपने अहंकार छोड़ा तो लोग सभी आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे मिलकर बड़ी खुशी होती है, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहना, हल्का हो जाता है इंसान, जो मुस्कुराते हैं वो हल्के रहते हैं। मुस्कुरा कौन सकता है जो अंदर से दिल से साफ है, अंदर किसी ना किसी के प्रति कोई बात चल रही वो मुस्कुरा नहीं सकता। मुस्कुरा के आप गुस्सा कर सकते हैं? मुस्कुराते हुए गुस्सा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मुस्कुराते हुए किसी की बुराई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कितने फायदे हैं, हम बाबा का भी परिचय देते, हमें कुछ मिला है हमारे से देखो। तो कहने का तात्पर्य, जहां आप अहंकार छोड़ेंगे आपका अकेलापन खत्म होगा, लोग आपसे मिलजुल कर रहेंगे, कहेंगे इनका नेचर बहुत अच्छा है। तो कहां आपको सबका सहयोग मिला, जो आज सबसे बड़ी बीमारी टेंशन डिप्रेशन की हो रही वो खत्म हो गई, लोगों में प्रेम खत्म हो रहा है, अकेलापन है, कोई बात करने वाला नहीं है। और वो इतना घातक है कि वो आतंकवाद से भी ज्यादा घातक है, अकेलापन। तो हमारा अकेलेपन का कारण क्या होता है? हमारा अहंकार। तो ये पांच चीजें हम छोड़ दे, ये पांच तत्व के शरीर का भान छोड़ दे, और मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। छोड़ो तो छूटे। क्रोध को छोड़ना है, पांच विकारों को छोड़ना है, रोग को छोड़ना है, छोड़ो तो छूटे। मरो तो तरो, मरो तो तरो, कहते हैं ना, बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, आपले मेले सिवाय स्वर्ग दिसत नहीं, मरोगे तो ही स्वर्ग में जाओगे। हमारे को तो बाबा ने जीते जी स्वर्ग दिया, लेकिन फिर भी हमको भी मरने को कहता है। कहां कहां से मरना है? पुराने संस्कारों से, पुराने स्वभाव से, अभिमान से, मैंपन से, मेरेपन से, मेरी बुद्धि, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, मेरा रूप, मेरे जैसा योग, मेरे जैसी बुद्धि, किसी के नहीं। मैं जितना देता हूं, मैं जितनी दान पुण्य करती हूं, अरे कर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी का उपकार कर रहे हैं कि आप बीज बो रहे हैं, फसल आपको ही मिलेगी। आप डाल रहे हो, बीज बो रहे हैं, तो वो किसके पास रहेगा? भगवान ने तो आज कह दिया, सबसे बड़ी बात तो बाबा ने आज पहली मुरली में कह दिया, सबसे बड़ी हमको बाबा ने किससे छुड़ा दिया? पैर पड़ने से छुड़ा दिया। आज बोला ना बाबा ने मुरली में कि मैं तो तुम बच्चों को नमस्कार करता हूँ, कि तुम तो मालिक के भी मालिक हो, पिता के बच्चे तुम मेरे मालिक हो, तो मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, नहीं तो सबके सामने झुक के पैर पड़ो। कहीं पे भी देखो, सत्संग वगैरह में जाओ, जो भी महात्मा जी होते हैं, जो भी होते हैं, सारे लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। बाबा यहाँ पे पैर छूने को बोलता है? नहीं, किसी के भी पैर नहीं छूना। तुम खुद पूजनीय हो, लेकिन वो पूजनीयपन की भावना, वो संस्कार का विमर्श होंगे। जब बाबा से योग लगेगा, ये याद स्मृति आएगी कि मैं कौन हूँ, मैं तो खुद देवी देवता हूँ, वरदान देने वाली, भक्त तो मेरे पैर पड़ते थे। तो कहने का मतलब, जब तक हमारे में ये निश्चय नहीं होगा मैं ही कल्प कल्प की पूजनीय आत्मा हूँ, मैं ही इष्ट देवी इष्ट देवता बनी थी, मैं ही भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाली हूँ, और बाबा में और स्वयं में निश्चय नहीं होगा, तब तक ये बात नहीं होगी। ये मैंपन छूटेगा ही तब, जब भगवान में सब कुछ मानेंगे कि जो कर रहा है वो बाबा का। हमको तो कई महावाक्य मालूम है, बाबा कहता है करण करावर मैं, करता मैं हूँ, काम वो करता है, नाम हमारा हो जाता है। उस एक पर भरोसा रखेंगे तो हम तर जाएंगे। एक राजा का कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, उसको बहुत सारे उपाय किए लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हुआ। कई लोगों से पता किया, फिर किसी ने कोई तांत्रिक का सुझाव दिया। उस तांत्रिक ने राजा से कहा कि अगर आप किसी एक बच्चे की बलि दें तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने अपने राज्य में अनाउंस किया कि जो कोई अपना बच्चा मुझे दे उसे मैं बहुत सारा धन दूंगा। अभी सभी ने सुना, सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन एक घर में 8 बच्चे थे और परिवार बहुत गरीब था। उनका एक बच्चा था, वो हमेशा मंदिर में, हमेशा साधु संतों की सेवा में, हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता था। माँ बाप को वैसी गरीबी के कारण इतने लोगों का पालन पोषण करना मुश्किल था, तो सोचा ये एक को दे दे, वैसे भी किसी काम का नहीं है, और ले जाके उस बच्चे को राजा को दे दिया, ये हमारा बेटा आप ले लो। सोचा काफी धन मिलेगा तो हमारे बाकी के बच्चे तो खाते पीते रहेंगे ना, वो तो संपन्न हो जाएंगे। अभी राजा ने तांत्रिक को बुलाया, अभी उसकी बलि देने के पहले, जैसे कि दुनिया में भी किया जाता है कि अंतिम इच्छा पूछते हैं, तो उस बच्चे को पूछा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? क्योंकि तुम्हें तो पता होगा कि तुम्हारी बलि दी जा रही है। बच्चा छोटा था लेकिन भगवान पे बहुत आस्था विश्वास वाला था। कहा हाँ, मेरी एक अंतिम इच्छा है। कहा बोलो। कहा कुछ रेत मंगा दो। रेत मंगा के दी गई। उसने रेत के 1, 2, 3, 4 ढेर बनाए, रेत के ऐसे छोटे छोटे ढेर बनाए, सैंड, रेत यानी सैंड जो समुद्र किनारे होते हैं वो, तो रेत के वो छोटे छोटे ऐसे किले बनाए। उसके बाद उसने देखा पहले वाले रेत के ढेर को ऐसे करके गिरा दिया, तोड़ दिया। फिर दूसरे रेत के ढेर को देखा, उसको भी गिरा दिया। तीसरे रेत के ढेर को देखा, उसको भी गिरा दिया। चौथे रेत के ढेर को देखा और प्रणाम करके कुछ अपने मन ही मन बोलने लगा, और उसके बाद कहा अब मैं तैयार हूं, आप मेरी बलि दे सकते हैं। अब राजा भी ये देख रहा था, तांत्रिक भी ये देख रहा था, डर गया, ये इसने क्या किया। राजा ने भी देखा, तांत्रिक ने भी देखा, इतना छोटा बच्चा, इसने ये रेत के 4 ढेर बनाए, 1, 2, 3 तोड़ दिया, चौथे के सामने हाथ जोड़ के कुछ बोल रहा और बड़े खुशी से बोल रहा है कि अब आपको जो करना है वो करो। तब राजा ने पूछा कि बेटा तुमने ये क्या किया। उस बच्चे ने जवाब दिया कि ये जो पहला ढेर, ये मैंने 4 ढेर बनाए रेती के, ये पहला जो ढेर बनाया था ये मेरे माता पिता का था। माता पिता का काम होता है अपने बच्चों की रक्षा करना, पालना करना, लेकिन मेरे माता पिता ने पैसे की लालच में आपको बलि दे दी, इसके लिए मैंने वो ढेर तोड़ दिया। माता पिता का प्यार मुझसे नहीं है तो मेरा भी मोह टूट गया। दूसरा ढेर मेरे रिश्तेदारों का है, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे माता पिता को समझाना चाहिए था कि पैसे के लोभ में अपने बच्चे को थोड़ी मारा जाता है, लेकिन उन्होंने भी, किसी ने मेरे माता पिता को नहीं समझाया, तो ये दूसरा ढेर भी मैंने तोड़ दिया, ये मोह भी तोड़ दिया, नहीं चाहिए रिश्तेदार का। तीसरा ढेर, बच्चे ने कहा ये तीसरा ढेर आप हो, राजा को कहा। राजा को कहा जाता है प्रजा के पालक, प्रजा की रक्षा करने वाले, लेकिन आप तो खुद आज मेरे प्राण ले रहे हो, तो ये मैंने तोड़ दिया, कि राजा पर से विश्वास उठ गया। तो कहा ये चौथा ढेर क्यों नहीं तोड़ा। कहा ये कैसे तोड़ सकता हूँ, ये तो मेरे भगवान का प्रतीक है, उस पे आस्था और विश्वास है, उसी को प्रणाम कर रहा था कि तेरे ऊपर भरोसा है। सुनते बरोबर तांत्रिक भी डर गया और राजा ने कहा कि पता नहीं इसकी बलि देने के बाद भी बेटा हो या ना हो, इतने अच्छे बच्चे को मारने से अच्छा, इतना अच्छा भक्त जिसका भगवान पे इतना भरोसा है, उसी को दस्तक ले लिया, उसी को गोद ले लिया। कहा राजकुमार तुम्हें खोसे, हम भी भगवान पे भरोसा रखे। माँ बाप धोखा दे दे, रिश्तेदार धोखा दे दे, राजा धोखा दे दे, लेकिन हमारा वो पिता परमात्मा कभी धोखा नहीं देगा। तो वो जो जो कह रहा है उसका कहना हम माने, छोड़ो तो छूटे, हमें इन सब बातों को ध्यान में रखना है कि मुझे क्या क्या छोड़ना है। ना हमें किसी से अपेक्षा हो, ना हमें किसी से उपेक्षा हो, ये दोनों बाबा से मिलने नहीं देती। अपेक्षा और उपेक्षा, एक्सपेक्टेशन और उपेक्षा, कोई इंसल्ट कर देना, मेरे को देखा लेकिन मेरे को ओम शांति नहीं बोले, अरे क्यों आप उसकी ओम शांति की उपेक्षा कर रहे, आप ही बोल देते, आप छोटे बन जाते क्या? नहीं, मैं बड़ी हूं ना, उनको सामने से मुझे बोलना चाहिए था ना, मत करिए ऐसा। जहां उपेक्षा हुई, इसमें मैरिज नहीं है, इसमें एटिकेट्स नहीं है। अरे भाई, हो सकता है उसने आपको देखा ही नहीं हो, ध्यान नहीं हो, किसी और चिंतन में हो, लेकिन आपने क्या सोचा, मेरे को देखा अनदेखा कर दिया। तो जहां आपकी इमोशंस हर्ट हुई, आपकी फीलिंग हर्ट हुई, तो आपने कहा उपेक्षा हो गई मेरी, मेरी इंसल्ट हो गई, तो क्या कहेंगे? बस उसके प्रति मन में विचार चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, कैसे मैं इसको दूं, बदला कैसे दूं, इसकी उपेक्षा मैं कब कैसे करूं किसके सामने, ये सब नहीं करिए। बाबा ने मुरली में कहा, जो दोगे वो मिलेगा। आज दुख का कारण क्या, हमने दुख दिया है, इसके लिए दुख हमारे सामने आ रहे हैं, हम कड़वे बोल बोल रहे हैं, इसके लिए हमें लोग कड़वे बोल बोल रहे हैं, बिना कारण नहीं। बाबा की मुरली में कई बार आया, कहती मेरी सास मेरे को बहुत तंग करती, क्या किसी जन्म में तुम उसकी सास रही होगी, तुमने तंग किया होगा, कहीं ना कहीं हमने भी उनको दुख देके आए हैं, तो हमें जो चाहिए वो हम देना शुरू करें। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, हम भी दुख ना दें, दुख को छोड़ो, सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं, मैपन छोड़ो, वो मैला कर रहा है, वही कहीं ना कहीं बाबा और हमारे बीच में दीवार बना हुआ है। जब तक ये मैं की दीवार नहीं टूटेगी, ब्रिज नहीं बनेगा, आप इस पार से उस पार बाबा के पास नहीं जा सकते, बाबा से मिलन नहीं होगा, वो जो प्राप्ति है वो नहीं होगी। हमारे जीवन में हमेशा यही रहता है जो मैंने शुरू में कहा, बहन जी मेरे बहुत मन करता है कि मैं 8 घंटा तो योग करूं, लेकिन परिवार में इतनी खिटखिट चले जाते ना, पति सुधर जाए ना तो बस संकट, वो तो नहीं सुधरेगा क्योंकि आप उनके प्रति शुभ भावना रखते नहीं, इसके वजह से तो मैं तंग हुई हूं। हम अपने प्रति भी शुभ भावना नहीं रखते, दूसरे के प्रति भी शुभ भावना नहीं रखते। अगर मैं किसी व्यक्ति को कहूंगी ये गलत है, गलत है, ये हमेशा गलत करता, हमेशा गलत करता, वो सोचेगा नहीं भी करो तो भी ये हमेशा गलत बोलती, वो गलत करना शुरू कर देगा। हम अपने इस शरीर को जो हमें परमात्मा से मिला रहा, इससे भी हम भेदभाव करते हैं, इससे भी हम प्यार नहीं करते, तो दूसरों से कहां से करेंगे। कई बार क्या कहते हैं, किसी ने पूछ लिया, बहन जी ने पूछ लिया, आप 4 दिन से मुरली भी नहीं है, हाँ बहन जी क्या करें, ये घुटनों ने तंग करके रखा है, बहन जी ये कमर ने तंग करके रखा है, ये घुटनों ने तोड़ दिया, मेरी कमर ने मेरे को तोड़ दिया, ये इतना तंग करती है कि मैं क्या बताऊं, इतना तंग करती है कि क्या बताऊं, ये इतना तंग करता है, ये इतना तंग करता, अरे तंग करता तंग करता, क्या भगवान से इसी तन ने मिलवाया आपको, उसको बुरा बुरा बोलेंगे, वो कहेगा बुरा बोलते हो तो चलो मैं और तकलीफ दूंगा, उसको बोला नहीं तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, प्यार करो अपने आप को, दर्द हो रहा है ना, देखो तुमने कितना साथ दिया, भगवान से मिलवा दिया, प्लीज हाँ देखो बाबा प्यार कर रहा है, दर्द हो रहा है ना, अब भी ठीक हो जाएगा, सिर दर्द करो ना, देखो बाबा सिर पे हाथ फेर रहा है, हा अच्छा लग रहा है ना, अपने आप से पूछो, महसूस करेंगे बाबा का हाथ वरदानी हो रहा, सिर दर्द चला जाएगा। जिसको बुरा बोलोगे वो बुरा करेगा, आप अपने शरीर को कोसते रहते हो, कोई नहीं पूछा तबीयत कैसे, अरे तबीयत ही तो वही तो मेन प्रॉब्लम है, अब वही मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बोल के उसको तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो, बोलो ठीक है, अच्छा है, उसको थैंक यू बोलो, सामने वाले को बोलो थैंक यू, तुमने इतना तो साथ दिया ना, प्लीज थोड़ा सा और साथ दे दो, प्लीज थोड़ा सा संगम युग बचा है, तब तक और साथ दे दो, हाँ चलते मुरली सुनने, प्लीज चलो, हाँ आके बाबा तुम्हारी मालिश करेगा, बोलो देखो वो साथ देता है कि नहीं, तो जब वह अपने आप को ही प्यार नहीं करते तो दूसरों को क्या प्यार करेंगे? दूसरों को नहीं करेंगे तो दूसरों से हमको कैसे मिलेगा? तो जो हम दे रहे हैं वही तो हम मिल रहा है, हमको मिल रहा है। योग करेंगे तो बार बार खड़ी देखेंगे, 12 बज गए क्या, 7:30 बज गए कि नहीं, अरे आज अभी तक गीत नहीं बजा। भगवान को भी याद करेंगे तो देख देख के नाप नाप के प्यार करेंगे। एक घंटा करना है, बाबा की श्रीमत है, 6:30 से 7:30 नौमा शाम का योग करना है। अगर 7:35 तक गीत नहीं बजा तो बार बार घड़ी देखेंगे, अरे आज गीत क्यों नहीं बजा अभी तक, अरे आज गीत क्यों नहीं बजा अभी तक, क्योंकि 7:30 बज गए, पेट में चूहे दौड़ रहे तो अभी तक गीत नहीं बजा। अरे 5 मिनट और ज्यादा योग कर लोगे, भगवान से सुख की प्राप्ति हो रही है। एक महात्मा जी बैठे माला फिर रहे थे, एक दूध वाली दूध बेच रही थी, जो भी आता माता जी 250 ग्राम दूध दे दो दे देती, कोई आता आधा किलो दूध दे दो दे देती, कोई आता 1 किलो दूध दे दो तो नाप के 1 किलो दे देती। सुबह से देख रहा था महाराज, वो पंडित जी बैठा, एक व्यक्ति आया, उसने बर्तन दिया, उसने कुछ नहीं बोला, वो ग्वालन ने पूरा उसका बर्तन भर दिया दूध से। महात्मा ने देखा कि ये इसने बोला भी नहीं और इसने पूरा बर्तन भर के दूध दे दिया। बाजू में महात्मा जी के एक व्यक्ति बैठा था, उसने पूछा, भाई ये सुबह से ये माता को देख रहा हूँ, किसी को 250 ग्राम, किसी को 100 ग्राम, किसी को 500 ग्राम, किसी को 1 किलो दूध दे रही, लेकिन वो जो आया उसको बिना नापे और बिना पैसे लिए दूध दे दिया, ये क्या चक्कर है? तो जो बाजू में बैठा था उसने कहा, महाराज जी आप नहीं जानते, वो ना उसका प्रेमी है, इसके लिए उसको उसने फ्री में दे दिया और भर के दे दिया। महात्मा जी की उसी समय दृष्टि खुल गई, वो एक ग्वालन जिसको प्यार करती है उसको बिना गिने दूध दे देती है। मैं भगवान को प्यार करता हूँ और माला गिन के गिनता हूँ, 1 माला हो गई, 2 हो गई, आज से माला गिनना छोड़ो। भगवान को भी 7 बजे तक 7:30 बजे तक ही याद करना, नहीं सोचो गिन के नहीं करो, क्योंकि जहाँ हिसाब किताब है वहाँ प्यार नहीं और जहाँ प्यार है वहाँ हिसाब किताब नहीं। अगर बाबा से प्यार है, योग लग रहा है, 2 घंटा कर लो ना, खाना तो रोज ही खाते हैं, हर कार्य तो हर रोज करते हैं, आत्मा को एक दिन अच्छी अनुभूति हो रही है तो योग कर लो ना, नहीं घड़ी देखते रहेंगे, गीत बजाओ और भागना है क्यों? तो एक लौकिक दुनिया के उदाहरण से भी हम सीख सकते हैं कि कोई किसी को देहधारी से प्यार करता है तो वहाँ पे भी मोल हिसाब किताब नहीं रखता, भगवान हमको कितना प्यार कर रहा है, भगवान हमें कितना दे रहा है, उसके लिए हम हिसाब किताब रखते। 3:30 से 4:45 तक ही योग करना, 1 घंटा अमृत वेला है, 5 बजे तक नहीं करेंगे। बाबा ने तो कहा है ना 4:45 तक, 2 घंटे करेंगे तो आपका ही भला होगा, आपकी आत्मा आनंद के झूले में झूलेगी। कहने का तत्पर, जहाँ प्यार है वहाँ मोल भाव नहीं होता, हिसाब किताब नहीं होता, घड़ी देख के नहीं बाबा को याद करो। अच्छा लग रहा है, लग रहा है अनुभूति, बाबा प्यार के झूले में झूला रहा है, झूलते रहो ना, झूलते रहो, देते रहो। कई लोग कमाते हैं लेकिन खर्चा भी करते जाते, जोड़ते नहीं, बाबा ने कहा ऐसे नहीं बनो, कमाओ और जमा करो। जमा कैसे होगा? लो और देते रहो, जमा होते जाएगा, बाबा से लो और दो। नहीं तो हमने लिया, योग किया, बाहर गए, वो मेरे रूम में जो माता है ना, बहुत बड़बड़ करती, बहुत तंग करती, बहुत परेशान कर दिया, यहाँ पे 1 घंटा सुन के गए क्लास और वहाँ पे 1/2 घंटा बैठ के वो माता ही के बारे में बात करते रहे, पानी सब उड़ गया ज्ञान। तो कमाई कहाँ हुई? उसी समय खर्चा कर दिया, खुशी कहाँ से होगी शाम को योग में बैठेंगे तो? पर चिंतन कर लिया ना, 4 दिन के लिए आया, एडजस्ट कर लेना। अब हर एक की 5 उंगली एक जैसी तो नहीं होती है, किसी का स्वभाव कैसा, किसी के कैसा, एडजस्ट करके चल ले। नहीं, हम दूसरे के बारे में गलती बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। कहने का तात्पर्य, अगर हम छोड़ेंगे तो छूटेगा। जैसे मैंने कहा, आप अपने मन से सोचना क्या क्या हमें छोड़ना है। 5 विकार बताए दिए, नाम मान शान की भूख बताई दिया, पद पोजीशन प्रतिष्ठा साधन मिले तो सेवा हो, नहीं। साधन तो हमारे को 2500 साल सभी मिलेंगे, हर चीज मिलेगी, बाबा और सेवा का मौका नहीं मिलेगा, वो अभी है। एक माता जी कहती, बहन जी बाबा कहते हैं ना साधनों के पीछे नहीं भागो, हम भी नहीं भागते। मैंने कहा क्या क्या नहीं करते आप? बहन जी हमारे यहाँ ना ब्लैक एंड व्हाइट ही टीवी है, हम ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकती इसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट, इसके लिए नहीं देख सकती, तो उसमें क्या त्याग किया? हम अपने हिसाब से बाबा के ज्ञान को अपने हिसाब से बना के बोलते हैं, जैसे कि बाबा को नहीं समझ रहा है। त्याग है तो वो त्याग का बल दिखेगा, जो भी कार्य करते हैं उसका बल दिखता है, फल दिखता है, शक्ति आती है। अच्छा खाया तो वो ताकत बन के हमको समझ में आती है, बाबा से योग मिला, शक्ति मिली बाबा से, बाबा का स्नेह मिला, आत्मा को परम शांति की अनुभूति हुई, आत्मा अतिंद्रिय सुख के झूले में झूल के आई, बड़ा मन शांत है, सब अच्छे लग रहे हैं। बाबा इन सब आत्माओं को भी ऐसे आनंद के झूले में झूला देता तो कितना अच्छा होता। उन आत्माओं को भी दूसरे दिन योग में बैठो, बाबा इन सबको भी ऐसी ऊपर बुला लो ना, जोर लगा के हैया, बाबा की किरणों की बाहों में झूल रहे, परमानंद का अनुभव हो रहा है। पूरी विश्व की 750 करोड़ आत्मा को ऊपर बुला लो और वो झूल रहे, उन आत्माओं की दुआएं लगेगी। लेकिन ये कब होगा? जब ये सब चीजें छोड़ी होगी। एक पंक्षी एक जीव भी समझ जाता है, हमको तो भगवान समझा रहा 80 साल से। ज्ञान तो हमने पुरानी मुरलियां सुनी है ना, अव्यक्तवाणियां पढ़ी है ना, सब कुछ अभी भी सुनी रहे ना, तो हम छोड़े तो छूटे ना। हमको दुनिया ने नहीं पकड़ा, हमने दुनिया को पकड़ रखा है, और हम कहते इसने मुझे पकड़ रखा है। हम कई जगह, कल भी बाबा की मुरली में थे कि हम अपने जज और दूसरे के वकील बन जाते हैं। ये चालाकी जो करते हैं वो बाबा को अच्छे नहीं लगती, किसी को भी नहीं अच्छी लगती, दुनिया में मनुष्य को भी अच्छे नहीं लगते। कहते इनका नेचर ना बड़ा सीधा साधा, ओपन बुक, जस्ट लाइक ए ओपन बुक, आई लाइक हर नेचर, इनका स्वभाव बड़ा अच्छा लगता है। भगवान को भी सच्चे दिल, बाबा क्या बोलते हैं सच्चे दिल पे, तो हम सच्चे दिल के बन जाए, जलेबी के जैसे नहीं बने, गोल 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 गोल। हम लोगों को घुमाएंगे, लोग हमें घुमाते रहेंगे, आप सरल स्वभाव रखो, लोग सरल रहेंगे, बीमारी आएगी सरलता से निकल जाएगी, बात आएगी प्रॉब्लम होगी सरलता से निकल जाएगी, क्योंकि मेरा नेचर है हर चीज सरलता से लेनी, आइए तो चली जाएगी। इस दुनिया में कौन सी चीज परमानेंट है? हम परमानेंट है क्या? हम भी आए हैं तो हम भी जाने के लिए आए हैं, प्रॉब्लम आई वो भी जाएगी, बीमारी आई वो भी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से भी ईमानदार रहे हैं, बाबा से भी ईमानदार रहे। एक व्यक्ति के पास यमराज आए, कहा तुम्हारा समय आ गया, चलो तुम्हें लेने आया। व्यक्ति थोड़ा चालाक था, कहा लेने आ ही गए हो, चलने ही है, चलने को तैयार हूँ, लेकिन अंतिम इच्छा तो सबको ही पूछते हैं ना, आप भी तो मेरी एक अंतिम इच्छा पूछो। बोला बोलो क्या अंतिम इच्छा? का एक एक कप कॉफी का हो जाए, आप भी पी लो मैं भी पी लूं फिर ले चलना। का ठीक है। अभी भाई गया, 2 कप कॉफी बनाया, यमराज की कॉफी में नींद की गोली डाल दी, खुद कॉफी पिया, यमराज ने कॉफी पी के यमराज को नींद लग गई। अभी यमराज ने तो लिस्ट दिखाया था कि देखो लिस्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है, तुमको ही शुरुआत करके तुमको लेने आया हूँ। देखा यमराज सो गया नींद में, गहरी नींद में है, तो उसने यमराज के हाथ से लिस्ट ली, अपना नाम ऊपर से मिटा दिया और सबसे नीचे लिख दिया, लिस्ट में सबसे नीचे लिख दिया। अब 2-3 घंटे के बाद यमराज जब नींद से उठा तो बड़ा फ्रेश हो गया, कहा तुमने कितनी अच्छी कॉफी पिलाई, मेरी तो बड़ी अच्छी नींद लग गई, बहुत अच्छा लगा, चलो तुमने मुझे खुश कर दिया, सबसे पहला नंबर तुम्हारा था, तुम्हें नहीं ले जाता, लास्ट से शुरू करता हूँ। समझ गए? सब बाबा के बच्चे समझदार है। तो चालाकी बाबा से नहीं करना, छोड़े तो छूटे। अगर तरना है तो मरना पड़ेगा। किससे? पुरानी दुनिया से, पुराना स्वभाव संस्कार से, मैंपन से, मेरेपन से। और जब ये करेंगे तो ही हमारा योग बाबा से लगेगा, और जब योग लगेगा बाबा की शक्ति आएगी, हर कोई अपना लगेगा, और अपना लगेगा तो क्या होगा, दूसरों के लिए भी हम योग करेंगे, योग का प्रयोग करेंगे, दुआएं मिलेगी, और दुआएं क्या करेंगी, उड़ाने का काम करेंगे। तो एक बात याद रखना, आज से खुद अपनी लिस्ट बनाए, मेरे में क्या क्या मैंने पकड़ के रखा है, मेरे अंदर क्या क्या है, गुस्सा है, क्रोध है, रोब है, जो भी है, लोभ है, मोह है, जो भी इतनी बातें बताए, और वो लिस्ट निकालना। ये लिस्ट निकालेंगी तो 108 की निकलेगी, 108 से ऊपर की निकलेगी। मुझे भी कहेंगे तो मैं निकाल के आपको दे सकती हूँ, लेकिन आप भी निकालना, और आप वो लिस्ट निकाल के मेरे पास जो है आज शाम के पहले ही उसको छोड़ देना। तो जो आप 2-3 दिन योग करेंगे तो बाबा की अनुभूति अच्छी होगी, और जो भर के जाना है तो भर के जाएंगे, तो नेचुरली बाबा भी खुश होगा और हमें तो खुश होना ही है। तो आप सबसे यही कहेंगे, एक जितना मौन यहाँ पे रहेंगे उतना ज्यादा अनुभूति होगी। जो बहुत बोलता है उसका योग नहीं लगता। बहुत बोलना यानी बाह्यमुखता में आना, और बाह्यमुखता में फिर जो बात सुनते हैं योग के समय वही दिमाग में चलती है। तो जितना कम बोलेंगे, मौन रहेंगे, जब भी किसी को देखेंगे तो मुस्कुरा देंगे, दुआएं मिलेगी, और जितना जितना मैंपन का त्याग करेंगे, मेरेपन का त्याग करेंगे, मेरा कुछ नहीं, बाबा तेरा सब कुछ, उतना उतना अच्छी अनुभूति करके जाएंगे। ओम शांति।